बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारा आज इस सिलसिले का 8वां सेशन है जी। इससे पहले कि मैं आज के सेशन का के बारे में बात करूं और पिछले सेशन से कनेक्शन जोड़ूं, मैं एक चीज के बारे में क्लियर करना चाहता हूं। मैंने पिछले सेशन में आई हैड रिसाइटेड वर्स और मैंने उसको एस्क्राइब किया था इकबाल को, ये तुंदिये बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब। और मैं हमारे दोस्त शेख लियाकत साहब ने ये बताया, मुझे करेक्ट किया कि ये इकबाल का शेर नहीं है। इसको आप प्योरली मेरी कम इल्मी पे महमूल कीजिएगा। मैं इतना लिटरेट आदमी नहीं हूँ जितना बनने की कोशिश करता हूँ शायद, लेकिन ये कि बहरहाल ये गलती है और इसको मैं चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड रहे कि इसको ठीक कर लिया जाए। ये जफर वाल इलाके से एक साहब हैं, सादिक हुसैन साहब, उनका शेर है। हम आगाज करते हैं जी आज के सेशन का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्रिएटिंग इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस के नाम से हम जो चल रहा है सिलसिला, उसी में आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने व्हाट वी डिड वाज के अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का क्या अच्छा तरीका होना चाहिए, इसके बारे में बात की थी। और इस सिलसिले में जो चीजें सामने रखी गई थी, मैं चाहता हूं कि एक दफा आप उसका खुलासा कर ले। यानी हमने पहले इसमें ये रखा था कि किस तरह से दूसरों की बात सुननी है, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना चाहिए, जजमेंट्स नहीं देनी चाहिए, अपनी इमोशंस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अदर्स अंडरस्टैंडिंग की। और इस सिलसिले में हमने एक सेशन जो पिछला था उसमें वी टॉक्ड अबाउट फोर पॉइंट्स, और मैं चाहता हूं कि उन चारों पॉइंट्स के हवाले से एक दफा उसका खुलासा फिर से कर लें, फिर हम आगे चलते हैं जी। से सबसे पहली बात हमने ये की थी कि आप अपनी बात अगर आपकी ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स के की राय के खिलाफ है आपकी राय, तो उसमें डोंट बी बॉग डाउन के, बिकॉज इसमें काफी प्रेशर पड़ जाता है। और इसको खास तौर पर ग्रुप थिंक कहा जाता है जी। ग्रुप थिंक का मतलब ये है कि वट एवर यू माइट होल्ड एज राइट, कई मरतबा इंसान महज पिछले जो चंद लोगों ने आपसे पहले अपनी आरा शेयर की हैं उनकी राय से अपने आप को मुतासर किए बगैर रोक, ये इसके खिलाफ देर इज हार्डली अ डिफेंस कि हम अपने आप को उसके खिलाफ डिफेंड कर सकें, तो हम उससे इम्पैक्ट हो जाते हैं एंड वी डू नॉट टॉक अबाउट व्हाट वी होल्ड एज द राइट थिंग। तो इसको हमें अपने बारे में चेक करना चाहिए, अनलेस यू कॉन्शियसली डिसाइड कि मैं इस मौके पर अपनी बात नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ व्हाट एवर रीजन माइट बी। मे बी यू थिंक दैट द ऑडियंस दैट द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्वर्सेशन आर नॉट रेडी टू हेयर व्हाट यू आर गोइंग टू से, या ये कि वो जितने इस वक्त हाइपर इमोशनली हुए हुए हैं वो शायद मौका दुरुस्त नहीं है। ताहम अपनी बात के ऊपर खड़े रहना या अपनी बात को प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का मतलब ये है जो आगे हमने डिस्कस किया कि ट्राई टू बी एज क्लियर एंड पेशेंट। और इसमें हमने एक बात ये कही कि अपने आप को कभी भी दूसरों की इंटेलिजेंस और उनकी सिंसैरिटी को जज करने के हवाले से वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, अपने अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि हम दूसरों की इंटेलिजेंस और सिंसैरिटी को जज तो नहीं कर रहे कहीं। नंबर दो ये कि अच्छी एग्जाम्पल्स को ढूंढ के कोशिश कीजिए कि बात को वाजी किया जाए। नंबर तीन ये कि कॉन्वर्सेशंस अगर आपकी जो बात है उसको समझा नहीं जा रहा तो उसके लिए अच्छी एग्जाम्पल्स, उसको रिपीट करें, उसको रिफ्रेज करें। दूसरे पार्टिसिपेंट्स जिनके बारे में आपकी आपका ये ख्याल है कि वो आपकी बात समझ गए हैं उनसे मदद ले सकते हैं आप, लेकिन ट्राई टू बी वेरी पेशेंट इन डूइंग ऑल दिस। एंड फाइनली हमें इसके खिलाफ बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है कि हम फ्रस्ट्रेट ना हो। मैं खास तौर पे असातिज़ा को जब वर्कशॉप्स किया करता था कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, ये बताया करता था कि हम, क्योंकि आई हैव ऑल्सो बीन अ टीचर और समटाइम्स वी फील कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये 10 12 20 लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और इसमें दो तीन दफा के बाद अगर सवालात उठते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। हमें इस मौके पर वो टाइम जरूर याद करना चाहिए, खास तौर पर अगर आप हैं या आप इफ यू आर अ ग्रोन अप टीचर और अ पेरेंट, के देवर टाइम्स जिस वक्त आज जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है और उसको आप पढ़ा भी सकते हैं, ये ऐसा वक्त गुजरा है आप लोगों के ऊपर कि जिसमें आप को समझने में मुश्किल हो रही थी और बार बार कोशिश की जा रही थी, बार बार कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही थी। तो उस टाइम को याद कीजिए, और आज भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आज आपको समझने में मुश्किल हो, तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ देयर। और इस तरह से व्हेन यू पुट योर सेल्फ देयर और एक हम्बल जगह से आप खड़े होकर दूसरों से बात करेंगे, तो उसमें आप यू विल बी मोर पेशेंट। और आपका ये जो टेंडेंसी है हमारी कि हम दूसरों की सिंसैरिटी और उनकी एबिलिटीज के ऊपर जजमेंट्स पास करने लग पड़ते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं। इंटेलिजेंस के बारे में भी मैंने ये गुजारिश की थी कि इंटेलिजेंस कोई एक दो चीजों का नाम नहीं है। हमारी एजुकेशन की बदकिस्मती ये है कि हमने लॉजिकल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ही को इंटेलिजेंस समझा हुआ है। वी हार्डली थिंक अबाउट अदर जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जिसके मैंने जिक्र भी किया था कि हार्वर्ड गार्डनर ने इसके ऊपर काफी तफसील से काम किया हुआ है, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं रखते हैं। इसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट ये गुजारिश की थी कि जब कोई ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन हो रही हो तो उसमें कोशिश की जाए कि कोई नया नुक्ता पैदा ना किया जाए। इसके नतीजे में कॉन्वर्सेशंस अनड्यूली प्रोलॉन्ग होती हैं, डिस्ट्रैक्ट होती हैं। और फाइनली जो मैंने पिछले हफ्ते बात गुजारिश की थी वो ये थी कि हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स, उनकी इंटोनेशन, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए उनकी इमोशंस को जरूर नोटिस करें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज को जेन बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए दैट अगर आपकी जब भी इमोशंस हाई होंगी, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हाई इमोशंस में इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत वीक हो जाती है। यानी अगर आप किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े जज्बे में हैं, जोश में हैं, या किसी चीज किसी शिकस्त को लेकर तो दुखी हैं, या किसी प्रॉब्लम में हैं, या स्ट्रेस्ड हैं, या टेंशन में हैं, तो इस मौके पर अगर वो इमोशन ज्यादा स्ट्रांग होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हैम्पर होगी। मैं इसकी बारहा बात करता हूं अपने असातिज़ा से भी कि खास तौर पर इस चीज को इसलिए सामने रखना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट, अगर आपका मकसद स्टूडेंट लर्निंग है और स्टूडेंट इस वक्त अपनी इमोशंस में हाई है किसी भी वजह से, और इमोशन में हाई का मतलब जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव इमोशन हो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, अगर हाई इमोशन है तो उस मौके पर लर्निंग खराब हो जाएगी जी। लर्निंग के लिए हमके लिए हमारा जरूरी है कि हम मॉडरेट लेवल ऑफ इमोशंस पर हों, जो भी हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। यहाँ से आगे हम आज बात करेंगे जी इंशाल्लाह। हमारा जो पांचवा पॉइंट है इस मामले में वो ये है कि व्हेन अदर्स डिसएग्री विद यू, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करना है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन अदर्स डिसएग्री विद यू तो इनवाइट करें दूसरों को टू अनकवर योर अजम्पशंस एंड बिलीफ्स। मैंने इस पर मेरा ख्याल है दूसरे या तीसरे तीसरे सेशन में ये बताया था आपको कि हम इसमें वन ऑफ द प्राइमरी स्किल्स इनिशियली जो सिखाते हैं वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये जो टर्म्स मैंने आगे यूज की हुई हैं, कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड पैराडाइमेटिक अजम्पशंस, ये सारी उसी की टर्म्स हैं, तो आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। हम अपनी बात को जिस तक बयान करते हैं तो आमतौर पर इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि ये बात किन अजम्पशंस पे बेस्ड है, और कई दफा हम बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, हमें नतायज अच्छे लग रहे होते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे लग रहे होते हैं और हम उसको लेकर आगे चल रहे होते हैं, लेकिन कई मरतबा वो बड़ी बड़ी वीक अजम्पशन से बेस्ड है। तो इसमें मैंने खास तौर पर ये तीन का जिक्र किया जी, दैट कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड पैराडाइमेटिक अजम्पशंस को जब आप इस पर गौर करेंगे एंड इफ योर पार्टिसिपेंट्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस, तो इसके नतीजे में आपको अपनी बात की गलती या सेहत पर इत्माद भी हो सकता है, गलती पर आप मुतनब्बे भी हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। मैं इसका बहुत ज्यादा एडवोकेट हूं कि ये हमको जरूर सीखनी चाहिए। ये आपकी जिंदगी में भी फायदा देती है, आपकी इल्मी जिंदगी में भी और अमली जिंदगी में भी। यानी ये जो अजम्पशंस हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमारी बातों में मौजूद होती हैं, ये हम जो अमल कर रहे हैं उसके अंदर भी बड़ी स्ट्रांगली मौजूद होती हैं। मैं इसको एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। आप जिस वक्त एक क्लासरूम को देखते हैं, एक क्लासरूम की सेटिंग को इमेजिन करें अपने जहन में, एक रोस्ट्रम लगा हुआ है, एक डाइस है और स्टेज है, और उधर टीचर खड़ा होता है और टीचर का रुख जो है वो क्लास की तरफ होता है, और सारी की सारी सीट्स जो उस क्लासरूम में लगी हुई हैं उनकी डायरेक्शन टीचर की तरफ है। ये एक क्लासरूम की अरेंजमेंट है, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ अजम्पशंस हैं, बड़ी स्ट्रांग अजम्पशंस हैं, और वो अजम्पशंस टीचिंग के बारे में भी हैं, लर्निंग के बारे में भी हैं, वो अच्छे टीचर के बारे में भी हैं और अच्छे स्टूडेंट के बारे में भी हैं। ये सारी की सारी अजम्पशंस जो हैं ये इस क्लासरूम के सेटअप के अंदर मौजूद हैं। ये हम इंशाल्लाह जब अगर मौका मिला और कभी हम इसमें काम करें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे, तो इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब एक और क्लासरूम इमेजिन करें जिसमें सारी की सारी सीट्स जो हैं वो सर्कल में लगी हुई हैं, एंड देयर इज नोबडी स्टैंडिंग आउट। ये जो क्लासरूम है, और ऐसी क्लासरूम्स होती हैं जी, अगर आपको ये अचंभा हो रहा है तो ये ऐसा नहीं कि ये कोई अनयूजुअल बात है, ये ग्रुप डिस्कशंस की बेसिस पर क्लासरूम्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इस क्लासरूम की अजम्पशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं उस पहली क्लासरूम से। तो आप जो कुछ अमल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर इफ योर चाइल्ड इज बिहेविंग इन अ सर्टन वे, और उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, ठीक है जी। ये हमारे अमल में भी और हमारे इल्म के भी परखने में हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है ये जो स्किल है जिसको हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये न्यूट्रल स्किल है। यानी यूं समझ लें कि यूं नहीं है कि इंसान जो क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव इंसान है वो हमेशा अच्छे फैसले करता है। ये अच्छे और गलत की बात नहीं है या बुरे की बात नहीं है, ये बेसिकली फैसलों के ऊपर गौर व फिक्र करने की बात है। एक क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव आदमी हो सकता है लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करना भी सीख ले, बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। हम अपनी जो जिंदगी के बारे में जो उसूल हैं वो आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और जाहिर है कि ये क्लास भी कैरेक्टर डेवलपमेंट की क्लास है। मैं इस अजम्पशन के साथ बैठा हूँ कि आप लोग अगर क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव होंगे तो यू विल नॉट यूज इट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, यू विल यूज इट टू टेक द राइट डिसीजंस। अच्छा जी, छठा पॉइंट जो है इस सिलसिले में, दैट रिलेट्स टू टारगेटिंग अफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट की फील्ड में, और मैनेजमेंट की फील्ड एक बड़ी कॉमन फील्ड है अब, और आमतौर पर लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं, मैनेजमेंट की फील्ड में दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक है अफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है ये आमतौर पर इसको कहा जाता है कि आपका जो टारगेट है उसको फाइनेंसेस और टाइम के लिहाज से कम खर्चे के साथ पूरा कर लिया जाए। वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव, यू अचीव दैट विद द मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एज वेल एज टाइम रिसोर्सेज। ये दोनों ही चीजें कम से कम अगर आप लगा रहे हैं तो इसको कहते हैं कि ये एफिशिएंसी है। अफेक्टिवनेस एक और चीज है। इसको एक्सप्लेन करने वालों ने जो एक्सप्लेन किया है वो ये है कि अफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप जो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से अचीव करते हुए आइंदा का जो पोटेंशियल है उसको भी बेहतर करें। यानी मिसाल के तौर पर इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जी, एक एसप्स फेबल में द गूज दैट लेड गोल्डन एग्स, उस कहानी में, उसमें अगर आपको याद हो और अगर आपने ये कहानी पढ़ी हो कि एक किसान था, उसके पास एक बतख थी, गूज थी, कि जो सोने का अंडा दिया करती थी, और उसने क्या किया कि बजाय इसके के इंतजार करता और उसकी जो एक एक दिन आ रही थी उसकी प्रोडक्शन उसको एंजॉय करता, उसने इस जल्दी में कि मैं सारे के सारे अंडे हासिल कर लूं, उसने उसको जिबा किया और जो एक दो अंडे थे वो उसको मिल गए, बाकी उसकी सारी की सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो गई। तो ये मिसाल से समझाया जाता है कि हमें बेसिकली सिर्फ ये नहीं करना कि जो प्रोडक्शन आ रही है उसको एंजॉय करना है, हमें प्रोडक्शन की कैपेसिटी को भी मेंटेन करना है। यानी इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि अगर हमारी कॉन्वर्सेशन जो हैं वो टारगेट हो रही हैं कि हमने एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन करनी है, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है, तो ये अफेक्टिवनेस होगी। और एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मैं कम से कम टाइम सर्व करके जो कुछ हासिल करना चाहता हूं उसको हासिल कर। तो मैंने ये गुजारिश की है कि हमें अपनी कॉन्वर्सेशन में वी शुड बी टारगेटिंग अफेक्टिवनेस रादर देन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आम तौर पर ज्यादा होती है हमारे फैसलों में कि जल्द से जल्द ये हो जाए, हम हुक्म देना पसंद करते हैं बजाय इसके कि लोगों को मशवरों में शामिल करें जिससे कि उनकी कैपेसिटी बेहतर होगी, उनकी एबिलिटीज बेहतर होंगी, हमारे साथ उनके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ हम चाह रहे हैं उसको फौरन हम कर लें, एंड दैट द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट दैट इज टू टेक अ डिक्टेटोरियल डिसीजन। ठीक है जी, हम उसको ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 7 पर मैंने ये गुजारिश की है कि ऑलवेज अज्यूम द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस इन अदर्स। एंड आई कैन अश्योर यू, मैं अपने जाती तजर्बे से भी ये बात आपसे अर्ज कर सकता हूँ और जो लोग इसमें राबता करते हैं और इस मसले पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनका भी इस मामले में जो तजर्बा है वो ये है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। इसकी एक वजह है जी, यानी इंसान के अंदर जब वो किसी के साथ मामलात करता है तो उसके अंदर उसकी मेमोरी कायम रहती है, वो उसके उसके बारे में कई दफा इंसानों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम पैटर्न्स फॉर्म कर लेते हैं। पैटर्न्स जब हम फॉर्म करते हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अगर आपसे झूठ बोला है तो आप अब नेक्स्ट टाइम उससे मामला करते हुए इसको जहन में रखते हैं कि ये झूठ बोल, हम बजाय इसके कि ये अज्यूम करें कि नहीं एक मौका हो सकता है कि जिसमें ये हो, वी अज्यूम दैट दिस पर्सन इज अ लायर एंड ही वुड बी लाइंग अगेन। ये जो एस्पेक्ट है ये कई दफा अच्छी कॉन्वर्सेशंस के अंदर सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है जी, दैट हम वी स्टार्ट जजिंग द अदर्स और हम उनके साथ लेबल करने लग पड़ते हैं बुरी इंटेंशंस को। भी इसको जेन में रखें कि ये जो पैटर्न फॉर्मेशन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एबिलिटीज इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर हमारे पैटर्न्स फॉर्म ना हो तो हम हर रोज सुबह घर से निकलते हुए रास्ता पूछेंगे अपने अपने दफ्तर या अपने कॉलेज या अपने स्कूल जाने का, एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है हमारे जहन में कि हमने किधर से मुड़ना है, क्या कौन सा रास्ता बेहतर है, किस जगह पे ज्यादा रश होता है, ये सारी चीजों का एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है, ये हमारी मेमोरी के अंदर आ जाता है। यही चीज हमें बहुत फायदा देती है, वी डोंट हैव टू आस्क फॉर डायरेक्शंस एवरी डे। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम हो जाती है, हम इंसानों के बारे में भी पैटर्न फॉर्म करने शुरू कर देते हैं और इंसान असल में एवरी इंटरेक्शन दैट यू हैव विद अनदर ह्यूमन बीइंग इज अ न्यू इंटरेक्शन। इसको जहन में रखें, यानी ठीक है ये बात आपके 2-4 तजर्बे हो गए, आपको अगर मुश्किल हो रही है तो आप अपनी ये प्रॉब्लम अपने पार्टनर, अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर के साथ शेयर करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ बिकॉज मेरे पिछले तजर्बात आपके साथ तो बहुत अच्छे नहीं रहे, तो हाउ कैन आई बी सर्टेन दैट यू नो आई कैन ट्रस्ट यू एट दिस टाइम। आई थिंक अगर पोलाइटली ये बात आप उनके साथ शेयर करें तो ये आसान हो जाएगा किसी को। मैं आपसे इस मामले में ये भी शेयर करूंगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज वर्कशॉप्स कई दफा हमारे अपने साथी जो हैं वो जब ये बात करते हैं कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ, मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रियलाइज किया है कि मैं इसको ठीक करूं, लेकिन मेरे जो पार्टनर हैं या मैं जिनके साथ मामला कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, वो अभी भी मुझे यही समझते हैं कि मैं किस तरह से उनको एक्सपेक्ट करूं। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि ये असल में उनके पैटर्न्स हैं, आप बदल गए हैं, आपने एक इंटेंशन पैदा कर लिए अंदर, मैंने अपने आप को ठीक करना है, मैंने अपने आप को बेहतर करना है। ये इंटेंशन आप असल में दूसरे को जब बयान करते हैं तो वो आपके वर्ड्स में बयान होती है, उनको आपका दिल नहीं दिखता, ये एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसी तरह से मैं जब अपने मैं मामला कर रहा होता हूँ दूसरों का और मैं दूसरों को जज कर रहा होता हूँ तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है। So it is one of the most difficult thing, but a very important thing for effective conversations. Number 8 ye ki if your partner or partners seem to be losing interest in the conversation, agar unka dhyan hat raha hai ya wo distract ho rahe hain ya unko aapko nazar aa raha hai, misal ke taur par bachcha hai wo tang kar raha hai ya is tarah ki cheez hai, to consider stopping the conversation and resuming it at a more appropriate time later. हम कई मरतबा, और ये चीज भी चूंकि उसी बेसिक पैराडाइम में जिससे मैंने आगाज किया था कि हम कॉन्वर्सेशंस को मुकाबला मुकाबला समझते हैं, यानी अगर मेरी बात गलत है तो मैं ये समझता हूं कि ये दूसरा जीत गया है, आई फील बैड अबाउट इट, जबकि इफ आई लुक एट एवरी कॉन्वर्सेशन एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर मैं इसको देखने लग पड़ूं कि मैं बेसिकली हर मौके पर सीख रहा हूं, और एवरी न्यू कॉन्वर्सेशन, हर नई कॉन्वर्सेशन जो है मुझे सिखाने की एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसके नतीजे में ये प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी कि मैं जरूर अपना पॉइंट ही प्रेजेंट करूं। कई मरतबा ये बड़ा अच्छा होता है कि हम ये खुद इस चीज को एक्नॉलेज करें कि अगर अगला डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है, या अगला जो है वो बार बार टेलीफोन को देख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी वी कैन टॉक एट अ लेटर टाइम जब आप ज्यादा फारिग हों, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन फॉर मी, समथिंग टू दैट इफेक्ट विच विल टेल द अदर पर्सन दैट ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आज ही इस गुफ्तगू खत्म करें। अगली चीज जो है वो ये कि ऑलवेज अवॉइड मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स। ये हमारे यहाँ शायद अपने पॉलिटिकल टॉक शोज की वजह से, शायद अपने सियासतदानों की वजह से ये चीज बहुत ज्यादा पैदा हो गई है। वी मेक पर्सनल रिमार्क्स, हम रिमार्क्स देते हैं और ऐसे देते हैं कि जिसके नतीजे में दूसरे को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर देते हैं, डिफेंसिव होने पर या दूसरे को एग्रेसिव होने पर मजीद मजबूर करते हैं, यानी बजाय इसके कि हम दूसरे की बात जो है अगर वो नामुनासिब बात है तो उसको इग्नोर करके, उससे सरफे नजर करके हम असल बात पर रहें, हम कोशिश करते हैं कि जो पर्सनली अगर मुझे किसी ने बुरा भला कह दिया है तो मुझे अब जरूर उसके मुकाबले पर उसको भी ये करना है, और उसको मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा हक है कि मैं करूँ। आई थिंक दिस कैन एक्चुअली रूइन रिलेशनशिप्स, और कोशिश करें कि इस मामले में अपने दिल को बड़ा करें, और इसके नतीजे में आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और कॉन्वर्सेशंस में इसमें बहुत फायदा होगा। एंड फाइनली जो आखिरी बात है वो ये कि एंड वेल, एंड वेल को मैंने एक्सप्लेन किया है जी थोड़ा सा, कि एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन ट्राई टू समराइज द पॉइंट्स यू हैव एग्रीड ऑन एंड व्हाट आर द वंस दैट रिक्वायर मोर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सचेंज। इस चीज को हम एक बार फिर कोशिश करें कि लोग अपने सारे कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स के साथ कि हमने ये पॉइंट्स हैं जिन पर हम अब एग्री कर चुके हैं, और इन इन चीजों पर अभी मजीद क्लैरिफिकेशन हम हासिल करेंगे, बिकॉज इसमें अपेरेंटली कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। इसको एक लर्निंग की एक्सरसाइज बनाना है जी। ये जो कॉन्वर्सेशंस का टॉपिक है, मैं ये चाहूंगा कि इसको फिर से यहां पर रीइटरेट करूं कि ये क्यों आगाज में, और यूं समझ लीजिए कि तकरीबन हर मेरी वर्कशॉप में जो हम करते हैं उसमें इसको एक असेंशियल प्री रिक्विजिट करार दिया जाता है। वी होल्ड आवर वर्कशॉप्स ऑन द कोलैबोरेटिव प्रिंसिपल, हम सब मिलकर लर्न करते हैं। यहाँ पर मेरी वर्कशॉप्स में कोशिश ये होती है कि ये सब लोग जो आए हैं वो सिर्फ मेरे से नहीं सीखेंगे, वो एक दूसरे के जिंदगी के तजर्बात से भी सीखेंगे इंशाल्लाह, और उसके नतीजे में व्हाट व्हाट द मेथड दैट वी अडॉप्ट इज स्मॉल ग्रुप कॉन्वर्सेशंस। यानी ये जो अभी मैंने मिसाल दी आपको कि एक क्लास वो है कि जिसमें टीचर ऐसे खड़ा होकर तो लेक्चर दे रहा है, खिताब कर रहा है, और बाकी सब लोग बड़ी तवज्जो के साथ उसको सुन रहे हैं, और एक क्लास वो है कि जिसमें सब लोग जो हैं उनको अपनी अपनी जगह पर मौका दिया जा रहा है कि दैट दे शुड बी एबल टू टॉक और अपने अपने आइडियाज, अपने जिंदगी के तजर्बात जो हैं उनको वो शेयर करें। ये जो एस्पेक्ट है ये हमारी क्लास में अडॉप्ट किया जाता है स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, बजाय इसके कि सबके साथ आप शेयर करें, स्मॉल ग्रुप में। और इसकी वजह यह है कि इसमें मेरी अजम्पशन ये है कि हर आदमी के लिए बड़े ग्रुप्स में शेयर करना कई दफा पॉसिबल नहीं होता, वो भी जिस आदमी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत ना हो, या वो बहुत ज्यादा शाय होते हैं कुछ लोग अपनी नेचर में, उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है कि अगर कुछ लोगों के साथ रैपो अच्छी क्रिएट हो जाए तो वो स्मॉल ग्रुप्स में ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो एस्पेक्ट है अच्छी कॉन्वर्सेशंस का, इसको हम बिल्कुल आगाज में, और ये जो कुछ टॉपिक्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिस तरह मैंने शुरू में गुजारिश की थी, ये इनमें से अक्सर टॉपिक्स वो हैं कि जो जो हमारी वर्कशॉप में प्री रिक्विजिट्स होते हैं, इसके बाद फिर हम जब आगे जब चलेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको बता दूंगा कि यहां से एक पूरी वर्कशॉप शुरू होती है जी। मेरी बात यहाँ पर इस टॉपिक पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक लेकर उसका बात का आगाज करेंगे। मैं आप सब के लिए अब हाजिर हूँ जी इंशाल्लाह। वी विल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मैंने ये दोनों स्लाइड इसलिए रख दी दैट आपको फिर से एक दफा वो सारी बात जो पीछे हुई थी पिछली क्लास में वो भी सामने आ जाए। अब अगर क्योंकि मुझे याद पड़ता है, कोमल बेहतर बता सकती हैं कि लास्ट टाइम कुछ सवालात थे जो रह गए थे, अगर हम वो मुनासिब समझें तो उधर से ही शुरू कर लें। जिन लोगों के सवालात रह गए थे हम पहले वो कर लेते हैं इंशाल्लाह। बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के रास्ते में बाज़ औक़ात बड़े बल्कि अक्सर औक़ात हम अपना सब्र खो देते हैं और बार बार बच्चों के एक्शन पर ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, मगर कुछ एक्शन किसी घर के बुजुर्ग के कहने पर पानी पिलाना वगैरह उसी वक्त रिक्वायर्ड होते हैं। इस वक्त कैसे दूसरों को सिखाएं? एज आई एम इन अदर क्लास बट प्लीज एड्रेस दिस क्वेश्चन सो दैट आई कुड लिसन टू दिस इन द रिकॉर्डिंग। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया जी ये सवाल कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के रास्ते में बाज़ औकात बल्कि अक्सर औकात हम अपना सब्र खो देते हैं, ये तो बात समझ में आती है, और बार बार बच्चों के एक्शन पर ज्यादा फोकस कर जाते हैं, ये बात भी समझ में आती है, मगर ये जो इधर से आपने आगे बात की है कि मगर कुछ एक्शन उस वक्त रिक्वायर्ड होती है, इस वक्त को कैसे दूसरों को क्या? अच्छा, मैं जो समझा हूं वो ये है दैट आप जो कुछ जो बच्चा कर रहा है उसके बारे में व्हाट यू प्रॉब्ली सेइंग इज, जो मैं समझा हूं कि आप ये फरमा रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कोई बड़ा आया है तो बच्चे को सलाम करना चाहिए और वो बच्चा नहीं कर रहा है और आप ये समझते हैं कि उसको करना चाहिए, या उसको अगर पानी पिलाने का उसने जिस तरह से आपने मिसाल दी वो कह रहा है बच्चा पानी नहीं पिला रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर इफ यू वांट टू गिव टू ट्रेन द चाइल्ड तो इसको सबसे पहले तो ये कि आपको अपना रोल मॉडल अच्छा करना चाहिए। इफ समबडी इज आस्किंग द चाइल्ड कि वो पानी पिलाए और बच्चा उसको अवॉइड कर रहा है तो देर इज नो हार्म कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को इशू बनाने के बजाय और डिस्कशन में लाने के बजाय हम खुद उठते हैं और उनको पानी प्रेजेंट कर देते हैं। इसके नतीजे में पीपल माइट थिंक दैट यू आर अ परमिसिव पेरेंट। आप जो चीज जहन में लानी है हमको बहुत इम्पोर्टेंटली वो ये है कि बच्चों की ये अबिलिटीज, ये बात के कोई बड़ा कह रहे तो मैं उससे फौरन मनवा सकता हूँ, इसको जहन में रखिएगा। मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे पास ज्यादा कुवत है, मैं अगर जबरदस्ती करूंगा तो बच्चा करने में मजबूर है, लेकिन मैं अगर इसको सिखाना चाहता हूं, मैं अगर उसकी तरबियत करना चाहता हूं तो फिर मेरे लिए जरूरी है कि वो कंप्लायंस ना करे सिर्फ, बल्कि वो दिल से उसकी ख्वाहिश भी बने। और दिल से ख्वाहिश कभी वो चीज, अक्सर औकात वो चीज कभी नहीं बनती कि जो आप पर एनफोर्स की जा रही हो। इस वजह से जरूरी है कि आप बच्चे को अपने साथ, जो आगे चल के हम इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगुएं करेंगे और आप खास तौर पे सोबिया इसमें शामिल रही हैं हमारी बीइंग द पेरेंट्स आवर चिल्ड्रन डिजर्व वाली वर्कशॉप में, व्हाट वी फील व्हाट आई फील इज कि वो एक लॉन्गर टर्म प्रोसेस है। मैं इसमें आमतौर पर इस चीज की मिसाल जरूर देना पसंद करता हूँ कि देखिए आप अपनी औलाद की जो डेवलपमेंट है उसके पहले एक दो बरस को कभी ना भूलिए, यानी आप उसके साथ बैठकर जितना मर्जी जोर लगा लें जो मर्जी कर लें, बच्चे ने नेचुरली एक टाइम के बाद ही बैठना चलना शुरू करना है, आप उसकी तरबियत करके उसको जल्दी नहीं कर सकते उससे। इसी तरीके पर उसने बोलना एक टाइम के बाद शुरू करना है, उसके अंदर जो अखलाकी वैल्यूज का प्रचार है ऐसा कि वो उसकी अपनी ख्वाहिश बन जाए कि मैंने अच्छा करना है, ये भी इसी तरह से टाइम देता है। ये खुद एक डेवलपमेंटल प्रोसेस के बाद होता है। अगर मैं उस डेवलपमेंटल प्रोसेस को जबरदस्ती तेज करने की कोशिश करूंगा तो वो आम तौर पर बैकफायर कर जाता है, यानी हम उस अंडरस्टैंडिंग को बच्चा मान लेगा, लेकिन देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं बच्चे की जो साइकी है वो ये बनेगी कि अगर मैंने ना माना तो मुझे सजा मिलेगी या मुझे इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है जी, दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन वी फोर्स आवर फोर्स अ चाइल्ड टू कंप्लाई। इस चीज को मेरी राय ये है, और इस मामले में जाहिर है कि इख्तलाफ हो सकता है, कि इस चीज को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम बच्चे के इंटरनल प्रोसेसेस को डेवलप करने में मदद दें।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम
सर, ये
वरहमतुल्लाह।
अभी आपने बात की कि इमोशंस जो हैं वो आप बात करें कि हम जब बात कर रहे होते हैं और इमोशंस में होते हैं तो हमारे इमोशंस जब स्ट्रांग होते हैं तो वो हावी हो जाते हैं हमारी बात पे, तो हम उसको कैसे अपने आप को कूल डाउन करें? क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जब कंटिन्यूसली आप किसी रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं तो जो कूल डाउन करना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यूसली कोई कन्वर्सेशन ऐसी होती है किसी बंदे से कि वो बार बार वही चीज़ हो रही होती है, और फिर आपको वो सिचुएशन से एक एक सलूशन तो ये होता है कि उससे निकला जाए उस सिचुएशन से, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि खुद को कैसे काम करें, हम अपने इमोशंस को कैसे काम करें?
इस मामले में जी एक पूरी फील्ड वजूद में आई है, यानी इसमें जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ी बड़ी खूबसूरत स्किल है और इसके वेरियस पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर औकात इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर ही नहीं होते कि हमारी इमोशंस हैं क्या। हमारी जो इमोशनल वोकैबलरी है वो ही बहुत लिमिटेड है। मैंने ये देखा है कि हम चंद इमोशन, मिसाल के तौर पर मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर अगर कुरेदें तो मालूम ये होता है कि एक इंसान बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ हुआ है, और वो उस हर्ट को जब बयान करता है तो पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट, और इस फ्रस्ट्रेशन को वो गुस्सा कह रहा है। तो हमको सबसे पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है उसको थोड़ा सा अगर तारुफ कराया जाए तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्किल्स हैं जिसकी आपने बात फरमाई है, सबसे पहले अपनी अपनी उस अवेयरनेस को डेवलप करें कि इस वक्त मैं मेरी इमोशंस हाई हो रही हैं, नंबर एक। और जो हाई हो रही हैं उसमें मेरी परसेप्शंस इन्वॉल्व हैं, यानी इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना जरूरी है। मेरी इमोशंस जब मिसाल के तौर पे मुझे गुस्सा चढ़ता है तो इसलिए असल में नहीं चढ़ता क्योंकि किसी ने बाहर गाली दी है, असल में इसलिए चढ़ता है क्योंकि उस गाली को मैंने ऑफेंसिव परसीव किया है। ये इंपॉर्टेंट है बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिए। यानी यही वजह है कि वही अल्फाज जिस पर आपको गुस्सा चढ़ रहा है वो अगर आपका एक जिगरी पुराना दोस्त बोलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खास तौर पे पंजाबी कल्चर में। यानी हम बड़े आराम से एक दूसरे को गालियां दे दे के तो बुला लेते हैं। पंजाब में मैंने ये देखा है कि हमारी कोई बात ही कंप्लीट नहीं होती, कोई अफेक्टिवनेस नहीं पैदा होती जब तक कि हम वो वर्ड्स यूज ना करें कि जो जिसके जिसके बारे में अगर कोई और अजनबी यूज करे तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है। तो एक सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके अंदर इमोशन पैदा हो रही है वो असल में कुछ बाहर होने की वजह से नहीं हो रही बल्कि आपकी परसेप्शंस हैं जो पैदा कर रही हैं। ये जो परसेप्शंस जो पैदा कर रही हैं इमोशंस, इसके बारे में अगर मैं अवेयर हो जाऊं और इस इनको अपनी बाकी जो स्किल्स हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हैं इसको ठीक करने लग पड़ूं, यानी आई हैव ऑल द राइट कि मैं एक चीज को किस तरह से परसीव कर रहा हूँ। ये मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, मुझे जो चीज बाहर पड़ी है वो गुस्सा नहीं दिलाती बल्कि जैसा कि मैंने उसको समझा है उसके बारे में कुछ मेरे मेंटल पैटर्न्स हैं या उसके बारे में मेरी कुछ सोच बन रही है। ये वो दो चीजें हैं, या तो मेरे एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं और या मेरी कुछ सोचें हैं। मैं जो मिसाल दे रहा था वो ये है कि फॉर इंस्टेंस इफ यू एंटर अ डार्क रूम और उधर कॉइल्ड वायर पड़ी हुई है और आपने उस कॉइल्ड वायर को अपने जहन में सांप समझा है, तो अचानक आपके जहन में जो पैदा होगी इमोशन वो खौफ की होगी। और अगर उसी मौके पर लोड शेडिंग खत्म हुई और बिजली आ गई और लाइट जल गई और आपने इमीजिएटली देखा है कि वो कॉइल्ड वायर है, तो इसके नतीजे में वो जो खौफ था वो इमीजिएटली खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो एक्चुअली वॉट एवर योर परसेप्शन इज अबाउट द इंसिडेंट दैट इज हैपनिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, आप जिस तरह से उसको परसीव कर रहे हैं उसके लिहाज से आपके अंदर इमोशंस पैदा होती हैं। हम अपनी इमोशंस को बाय बीइंग मोर पर्पजफुल इन लाइफ, बाय बीइंग मोर अपनी इमोशंस के बारे में उनको रेगुलेट करने, उनको नेविगेट करने की स्किल्स हैं जो कुछ हम सीख सकते हैं। ये असल में ये तो बड़ा तफसीली मौजू है जी, और इस पे मेरे जो यहाँ पे आज मौजूद हैं साथी नजम शाह साहब, ये मैं इनसे बड़ी रिक्वेस्ट भी करता रहा हूँ कि ये अपनी इस वर्कशॉप को, इमोशनल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप को हम मिलके करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी इस चीज़ की फरागत नहीं हो गई उनके पास, तो वरना हम इसके ऊपर तफसील से बात करते। आप अगर इससे तफसीली तौर पर जानना चाहें तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नजम भी मौजूद हैं इधर, मेरे साथ भी आप पर्सनली एक दफ़ा बात कर लीजिएगा, बिकॉज ये अदरवाइज एक टेक्निकल टॉपिक है और इसकी काफ़ी डिटेल मतलूब होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक बात वाजे हो गई होगी कि ये इसको सबसे पहले ये समझना कि जो मेरे अंदर इमोशंस नेगेटिवली पैदा होती हैं, सबसे पहले उसके बारे में अवेयरनेस हो जाए। आम तौर पर मैं अवेयर ही नहीं होता हूं कि मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, और मैं मिसाल के तौर पर अपनी बात को जारी रखूंगा। अवेयरनेस जैसे ही पैदा हो जाएगी तो मैं अपने आप को निकाल सकता हूं उस गुफ्तगू से कि अभी मेरा ख्याल है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, इसके अच्छे नतायज निकलने मुश्किल होंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये समझना कि ये इमोशन क्यों पैदा हो रही है, ये इमोशन किसी बाहर के वाकये से नहीं पैदा हो रही, ये मेरी परसेप्शन से और मेरे मेंटल पैटर्न से पैदा हो रही है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद उसको नेविगेट करने की एबिलिटी पैदा कर लेना। अगर आपके अंदर नेविगेट करने की एबिलिटी नहीं भी है, तब भी ये जो दो पहले स्टेप्स हैं और इसके नतीजे में आप अपने आप को अगर विड्रॉ कर लें उस मौके पर कि नहीं अभी मैं ये नहीं करता हूं बिकॉज आई एम हाई ऑन इमोशंस, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हमारी इफेक्टिवनेस बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह।
सर, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है
जी
कि अगर अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को हम परसीव करते हैं नेगेटिव, और अगर वो होती भी हकीकत में नेगेटिव है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ?
नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसका
ऐसा
मतलब है कि
होता है?
हमारी परसेप्शन ठीक है, होता है जी। मिसाल के तौर पर आप एक कमरे में जिसमें डार्कनेस थी, अंधेरा था, पेंटर हुए हैं वहां पर, असल में कॉइल्ड स्नेक ही है जिसको आपने स्नेक समझा है, तो आपका जो खौफ है वो रियलिटी बेस्ड होगा, आपकी परसेप्शन ठीक होगी, ठीक है जी। बट देखें, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अक्सर औकात हमारी परसेप्शन ठीक हो या गलत हो, हमारे ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही होती है, ठीक है, रादर देन मेयरली एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई माई सुपरफिशियल परसेप्शंस और इनएक्यूरेट परसेप्शंस और पॉसिबली इनएक्यूरेट परसेप्शंस। मैं जो काम कर सकता हूँ वो ये कि पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन ठीक कर लूँ,
ठीक
ये काम शुरू कर दूंगा। जैसे ही मुझे ये मालूम होगा ना जी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मुझे दो चीजें पता चलेगी, एक ये कि मैं अपनी परसेप्शन को एक्यूरेट कर लूँ, उसको चेक कर लूँ कि वो ठीक है या नहीं, और एक और चीज पैदा हो जाएगी वो ये कि क्योंकि परसेप्शन मेरी ही है तो मैं इसको और तरह भी परसीव कर सकता हूँ, यानी ये कोई खुदाई हुक्म नहीं है कि मैं एक चीज को जब इस तरह से देखूं तो लाजमन इस तरह से इंटरप्रेट करूं, मैं उसको उस तरह इंटरप्रेट कर सकता हूं जो मेरे जज्बात के लिए ज्यादा मुनासिब होगा।
ठीक
तो दिस इज व्हाट ये एबिलिटी, ये वो एबिलिटी है दूसरी जो मैंने आज की है, जिसको हम नेविगेट इमोशंस में फिर सिखाने की कोशिश करते हैं।
ठीक थैंक यू,
ये
जज़ाकअल्लाह
मोस्ट
खैर।
वेलकम जी, जुमा बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जी
अस्सलामुअलैकुम मोहित साहब।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी।
मोहित साहब, पीपल हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड अपब्रिंगिंग एंड लर्निंग हैबिट्स। दे हैव डिफरेंट व्यूज ऑन रिलीजन, वे ऑफ लाइफ, इंटरेस्ट। What happens when you don't have anything in common and you do try to have meaningful conversations, but the other person is so rigid in his way of thinking that he is not ready to share or even to listen to you? So फिर इसमें फिर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन आप कैसे कर सकते हैं?
आपने जो बात फरमाई है इसमें दो एंड में आपने चीजें दो वर्ब जैसे यूज किए हैं कि जिसके बाद असल में मुझे आपने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। इफ अ पर्सन इज नॉट रेडी टू शेयर नॉर टू लिसन टू यू, आई एम वेरी सॉरी, यू कांट हैव एनी कॉन्वर्सेशन विद देम। बट इज इट योर परसेप्शन? इज इट द रियलिटी? इज इट एक्यूरेट? दिस इज समथिंग दैट वी शुड कीप ट्राइंग टू टेस्ट। आपने जब ये
मोहित
फरमा दिया, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर लेट्स से इफ आई वर टू स्टार्ट डिलीवरिंग अ लेक्चर और मुझे इस चीज का एहसास ना हो और मेरा कनेक्शन ही डिसकनेक्ट हो जाए, तो आप लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी और मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं। ये कॉन्वर्सेशन बन जाएगी उसके बाद। यानी आप तो अगर एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में जो आपकी राय है अगर वो एक्यूरेट है कि ही इज नीदर विलिंग टू शेयर नॉर विलिंग टू लिसन, तो फिर कॉन्वर्सेशन तो असल में दो, कम अज कम दो लोग होने चाहिए हु आर विलिंग टू शेयर एंड टू लिसन।
मोहित साहब, मे बी आई फ्रेज्ड इट रॉन्गली. शेयर का मेरा ये मतलब है कि यू गिव योर पॉइंट, ही गिव्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ही सेज ओके दिस इज इट एंड दिस इज द करेक्ट वन. नाउ व्हेन यू ट्राई टू से समथिंग फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ही सेड आई हैव ऑलरेडी सेड इट एंड दिस इज इट एंड दैट इज द एंड, टेक इट और लीव इट वाली बात है.
ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि उसने सिर्फ वो ये चाहता है कि आपसे कंप्लायंस उसको मिले। आप दे सकते हैं, दे दें अगर जरूरत समझते हैं, जरूरी समझते हैं, क्योंकि कॉन्वर्सेशन तो अभी भी नहीं हो सकती। इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू लिसन टू व्हाट द अदर्स हैव टू से, ही कैन बी अ वेरी गुड लीडर हु डज नॉट लिसन टू एनीवन बट टू हिमसेल्फ, बट ही कैन नॉट बी अ वेरी गुड पार्टनर इन कॉन्वर्सेशन। उसके
जी, आई
बारे में
अंडरस्टैंड.
we just need to accept the fact. I mean, I would strongly, very strongly recommend that अगर ये आपकी किसी के बारे में perception बन गई है, तो इस perception को कोशिश करें कि ऐसा data आपके पास आए कि ये खराब गलत साबित हो जाए। Maybe you will be able to find, because that will be the positive thing to do. Otherwise, we will be labeling a person to be of a particular kind. And this label that we give to a person, ये खुद असल में हमारी परसेप्शंस के नतीजे में हो रहा है। ठीक है ना जी, ये अगर मैं मिसाल के तौर पर आई विल गिव यू एन एग्जांपल, क्या वो किसी की भी बात नहीं सुनता? क्या कोई भी उससे बात नहीं कर सकता? क्या ये मेरे रिलेशनशिप की तो नहीं प्रॉब्लम, जो हमारे रिलेशनशिप का एक पास्ट है उसकी वजह से वो मेरी बात नहीं सुन रहा? तो मे बी आई कैन सीक द हेल्प ऑफ सम अदर पर्सन। ये सारी चीजों के बारे में आप अगर अपने आप को खुला रखेंगे तो उसके नतीजे में जो फायदा होगा वो अल्टीमेटली आप ही को होगा।
I think it's my own relationship. I think others he may listen to, but definitely not me.
So that means that there is something, whatever negative thing he has or she has, you know, accumulated about the relationship, they are hindering from effectiveness of the conversations as well. Every conversation, अगर वो हर मामले में इस तरह से है, तो इस मामले में इफ यू कैन फाइंड हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स, यू नो, डू दैट, मे बी दैट माइट इम्प्रूव योर रिलेशनशिप इज इट। बट
शुक्रिया, बहुत बहुत
आई वुड
शुक्रिया.
स्ट्रांगली रिकमेंड जी कि हम किसी आदमी के बारे में, जब तक वो जीता है, जब तक वो है इस आजमाइश में है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, ये आई थिंक हमें इस जहन को बड़ा खुला रखना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी तरह से इसके दिल को खोल दे अगर आप ये समझते हैं कि वो बात गलत कर रहे हैं, और अगर ठीक
ओके,
कर रहे हैं तो वैसे ही मान लेनी चाहिए।
शुक्रिया जी, थैंक यू
मोस्ट मोस्ट वेलकम जी।
जी. अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। तारिक साहब, आई एम
जी.
वेरी सॉरी
मैं
लास्ट
तो
टाइम नहीं हो सका आपका सवाल।
जी इट्स ऑल राइट. एक तो मेरा कमेंट, आपने बड़ी अच्छी चीज कही कि पंजाबीज की कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि वो फ्रैंकली गालियां भी यूज कर लेते हैं बीच में कम्युनिकेशन में, और बड़े अच्छे
बिल्कुल
पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े
बिल्कुल,
एक्सपीरियंस,
और
और
बात में जोर ही
इट
पैदा नहीं होता जी।
वो डजेंट मैटर, वो मतलब अच्छी खासी इंग्लिश में भी बात कर रहे होते हैं तो बीच में दो चार जुमले
क्वाइट
पंजाबी ऐसे बोल जाते हैं कि वो
राइट, क्वाइट
दैट्स
राइट।
गुड, दैट्स गुड. अच्छा, ये मेरा सवाल, आपने एक चीज यूज की थी कि हमारा एक बिहेवियर जो है बड़ा हमारे ओवर शेडो कर जाता है चीज को, कि हम डिक्टेटोरियल बिहेवियर जनरली हर चीज पे आ रहा है, बल्कि इससे अगर आगे चलूं मैं तो शायद फ्यूडल फ्यूडल बिहेवियर ही हमारे बहुत एक चल रहा है, और ये हर ग्रुप में, हर लेवल पे, हर कंपनी में, हर जगह पे, फैमिली में है, हस्बैंड अपने आप को डिक्टेटर समझता है, ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ आपका जो टॉप लेवल है वो समझता है, इवन जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं उसमें भी, प्राइम मिनिस्टर
राइट,
कोर कमांडर मीटिंग्स हैं उसमें भी. तो ये कहाँ से आया हमारे माशरे में, मुसलमानों के माशरे में? ये तो हमें इसकी तालीम तो नहीं दी गई थी, हमें तो अमरुहुम शूरा बैनहुम की तालीम दी गई थी. जी
इट्स वेरी डिफिकल्ट जी। अनफॉर्चुनेटली एक बात, आपकी बात बड़ी बड़ी जबरदस्त बात आपने फरमाई कि हमें जो तालीम दी गई थी वो तो अमरुहुम शूरा बैनहुम ही की थी। لیکن انفارچونیٹلی اس تعلیم کو ہم نے اگنور کیا اور پھر ایک اور مسئلہ بن گیا، وہ یہ کہ ہم نے، ہم میں سے ہر اس آدمی نے جو دین کو جانتا تھا، اس میں خاص طور پہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے بنیادی مخاطب جو تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ان کی جگہ پر پلیس کر دیا، اور پھر یہ چاہا کہ سب لوگ جو اس کے آس پاس ہیں وہ اس کی اطاعت کریں اگر میں ایک لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ہوں. یہ اس کی آپ کو مثال ہمارے اپنے جو علماء کے رویے ہیں ان میں کافی مل جائے گی. جی میں اس کے اوپر بہت زیادہ نہ تو میرا خیال ہے کہ تجربہ رکھتا ہوں اور نہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے، تاہم یہ مجھے دکھتا ہے، دس از سم تھنگ وچ اپیئرز. اور یہی چیز جو ہے مثال کے طور پر مجھے اس معاملے میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دوست، اپنے استاد خالد ظہیر صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو بات ہے کہ ناٹ ٹو کوشچن وائی بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آرمی اس کے بغیر بن نہیں سکتی، کیا یہ بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک سولجر جو ہے وہ اگر کسی کو اپنے اپنے باس یا اپنے سینئر کے کہنے پر گولی چلا دے اور وہ مر جائے تو کیا سولجر کی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں؟ تو ہی اگریڈ ود می کہ ایسا نہیں ہے، یعنی وی آر آل ریسپانسبل فار آور ایکشنز، اور اگر ہم جواب دے ہیں تو پھر ہمیں ان سوال، یہ جو ناٹ ٹو ریزن بائی بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی جو ہے، اٹ کڈ ناٹ اپلائی ٹو دا مسلم آرمی فار انسٹنس. اٹ ہیز ٹو بی مائی اوپینین دیٹ آئی ایم فائٹنگ فار دا رائٹ کاز. یہ ایک حد تک اعتماد بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ڈیٹا سامنے آنا چاہیے. وجہ کیا ہے اس کی، یہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. جی وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ جس جس پرنسپل کو میں نے گزارش کی کہ ہم افیشنسی کو ہمیشہ زیادہ ویلیو دیتے ہیں، ہم افیکٹونیس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے. افیکٹونیس عام طور پر افیشنسی کے مقابلے میں زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ ابھی جس طرح دیکھیے ایک سوال میں جب یہ پوچھا گیا، جب میرا خیال ہے وہ لکھے ہوئے سوال میں، کہ ہم بچوں سے وہ رویے نکلوانا چاہتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ دے آر دا رائٹ تھنگس ٹو ڈو، وہ بیہیویئرز نکل آئے گی، تو بڑا آسان ہے یہ کہ ہم ان کو حکم دیں، ان پر پریشر ڈالیں، دو چانٹے ماریں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ یہ کرو. لیکن اف آئی ڈیزائر کہ میرے بچوں کی ڈیزائر اچھی ہو جائے، وہ جو چاہتے ہیں وہ اچھا ہو جائے، تو پھر مجھے اس پر جو کام کرنا پڑے گا وہ کم و بیش ویسے ہی ہے کہ ویسے ہی صبر آزما ہے کہ جس طرح سے مجھے بچے کی پیدائش کے بعد سے 1.5-2 سال تک میں انتظار کرتا ہوں کہ اب یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع کرے گا. اٹ کین ناٹ ہیپن ان اے ڈے، اٹ کین ناٹ. میں جتنا مرضی اس کے منہ میں غذا گھسانے کی کوشش کروں، جتنا مرضی اس پر زور ڈالوں، جو مرضی کر لوں، جتنا مرضی اس کو پریشر میں ڈال دوں، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہے. اس چیز کو میں ریکگنائز کرتا ہوں، اس لیے صبر بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے کی ڈیولپمنٹ جو ہے، میں جس طرح سے آپ نے مثال دی، ایک اور فیکٹر جس نے بڑا رول پلے کیا وہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی فار اے ویری لانگ ٹائم وی ہیو ان دس سب کانٹیننٹ وی ہیو بین اے پارٹ آف ایکسٹرنل رول ایز ویل، اور اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ بیوروکریسی ہے مثال کے طور پر، آپ کبھی ان کا رویہ غور کیجیے گا، وہ آپ کو پتا ہے نا بیوروکریسی کو ہم سول سروینٹ کہتے ہیں، سول سروینٹ، پبلک سروینٹس ہیں یہ لوگ، لیکن یہ جو آرمی ہے یہ اٹ از پیڈ بائی دا سٹیزنز آف پاکستان، دا ٹیکس پیئرز. لیکن یہ دونوں ہی جو انسٹیٹیوشن ہیں، جب ان کو اتھارٹی مل جاتی ہے تو دے بیہیو، دا بیوروکریسی اٹ بیہیوز ایز دا ماسٹرز آف دا پبلک. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اب ہمارے کنٹرول میں، اور ہم نے اپنی آنکھیں جو کھولی اس سوسائٹی میں اور ہماری جو پرورش ہوئی، وہ کیونکہ ایک غلام قوم تھے ہم، تو ہم نے اسی کو کنٹینیو کیا کہ شاید مینج کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے. آپ کبھی ادھر چلے جائیے، جو لوگ ہمارے رولرز تھے اس وقت، وہ اپنی جگہوں پر جو سسٹمز کریٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی. تو آئی تھنک ون آف دا میجر رولز واز پلیڈ بائی دس ایسپیکٹ، کہ ہم اگر پبلک سرونٹ بھی اگر ڈسیزن میکر بن گئے تو اس کو پبلک کو سروس نہیں پرووائڈ کرنی بلکہ اپنے آپ کو رولر سمجھنا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ون آف دا ایسپیکٹس، اور بھی بہت سارے ہوں گے یقیناً ہوں گے. ہم فار انسٹنس، ون آف دا تھنگ دیٹ آئی ہیو فیلٹ از دیٹ، آپ کبھی اپنے کولیگز کو دیکھیے گا جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، और बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी को प्रमोट करके आपका मैनेजर बना दिया जाता है, अगले ही दिन आपके रिलेशनशिप्स में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज नाउ ही बिहेव्स एज अ पर्सन हु इज सुपीरियर टू यू। ये जिम्मेदारियां हैं, ये कोई सुपीरियॉरिटी या इंफीरियॉरिटी का मामला नहीं है, ये भी वैसे ही जिस तरह भी हमने इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी, यानी इंटेलिजेंस कोई दो चीजों का नाम नहीं है, इंटेलिजेंस की बहुत शक्लें हैं, बेतहाशा शक्लें हैं, और इसमें कुछ लोग बहुत आगे होंगे एक इंटेलिजेंस में और कुछ लोग बहुत आगे होंगे दूसरी इंटेलिजेंस में। एक आदमी जो है जो कि मिसाल के तौर पर स्पेशल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा आगे है, वो जरूरी नहीं कि लिंग्विस्टिक या लॉजिकल इंटेलिजेंस में भी उतना ही आगे हो। जो सोसाइटी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर रख रहे हैं वो चूंकि ये दो हैं लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल, तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस को इग्नोर कर देंगे। हालांकि स्पेशल इंटेलिजेंस मिसाल के तौर पर इंटीरियर डिजाइनिंग में, मिसाल के तौर पर आर्किटेक्चर में, मिसाल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग में, इट कैन प्ले अ वंडरफुल रोल जो कि बहुत सारी दूसरी इंटेलिजेंसेस से बहुत बेहतर कर सकता है मामले को, लेकिन उसको वैल्यू नहीं किया जाता, इसलिए कि हमने उसको कभी रिकग्नाइज ही नहीं किया एट अ फॉर्मल एजुकेशनल लेवल। सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन तारिक साहब। कभी कभी
जी
जवाब लंबा हो जाता है तो मेरा ख्याल है मैं
नहीं, मेरा
मेरा
ख्याल सब्जेक्ट ही थोड़ा इतना बड़ा है कि वो जवाब तो लंबा होना ही था। तो डेफिनेटली देखें जी, शॉर्टकमिंग्स तो मुझे लग रहा है, जाहिर है कि एक हमारे नेशनल बिहेवियर में है, बल्कि नेशनल से बढ़ के मैं कहूँ पूरी उम्मा के लेवल पे है, कि हमारा वो कंसल्टेटिव बिहेवियर डेवलप हुआ ही नहीं। और कोई मुझे लग भी नहीं रहा कि किसी फोरम पे किसी कोई थिंक टैंक हो, कोई ऐसा हो कि ये हमारे जो एक बड़ी बेसिक डिफेक्ट पैदा हो चुका है, जिसने जिस जो हमारी थिंकिंग तक इम्पैक्ट कर देती है, हमारे एक्शन तक को इम्पैक्ट कर देती है, इसको कैसे एक कंसल्टेटिव लाया जाए। तो अल्लाह करे जी कोई सिस्टम ऐसे बने
इंशाल्लाह जी,
कि
बिल्कुल आई क्वाइट
इंशाल्लाह।
अग्री।
थैंक यू वेरी
और
मच, बहुत
इसमें
शुक्रिया।
इसमें वी शुड ऑल स्टार्ट एट आवर पर्सनल लेवल्स। हम सब अपने अपने पर्सनल लेवल्स में कुछ लोगों के ऊपर हैं, ऊपर से मुराद है एक हायरार्की में, मिसाल के तौर पर मेरी औलाद है, मेरे घर में मुझे सरबरा अगर समझा जाता है तो मैं हूँ उधर सरबरा, तो मैं वो मामला कैसे चला रहा हूँ, दैट कैन बी अ वेरी गुड यू नो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रेनिंग आवर सेल्स।
जी एग्जैक्टली, आपकी जिम्मेदारी भी बुनियादी जिम्मेदारी तो यही है कि आपका इन्फ्लुएंस आपकी अपनी फैमिली में या अपने
राइट राइट
ऑर्गेनाइजेशन में है, या जहाँ भी है वहीं से स्टार्ट होता है।
क्वाइट
जी
राइट
बहुत
जी,
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी सर, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए, करीब से।
अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो मैं थोड़े से अपनी कुछ चीजें रखूंगी, अपना तजर्बे समझ ले रखूंगी, उसके बाद सवाल करती हूँ।
जी
और मैंने ये कहना था कि फर्ज कर लें, एक मैंने मकसद बना लिया अपना कि मैं एक प्लेटफॉर्म चूज करती हूँ, आप उसका लगा लें फेसबुक है या ग्रुप है कोई भी, और उस पर मैं चाहूंगी कि यहाँ पे दीन की बात कर लूँ या इखलाकियात पर कुछ चूज, कोई जैसे आपने करेक्टरिस्टिक्स पे किया हुआ है, ऐसे ही एक मैं मकसद बना लेती हूँ,
राइट
उस पर अब मैं शुरू हो जाती हूँ अपने अपने तरीके से बात करने के लिए। पोस्ट कर रही हूँ अगर फेसबुक पे, फर्ज कर लें मैंने पोस्ट एक की के औरत के पर्दा ना करने से मर्द बेपर्दा कैसे हो जाता है। अब लोगों की रवैये इस पर बहुत तकलीफ देते हैं, मतलब कि जैसे कि वो जातियात पे ले जाते हैं और कहते हैं कि घटिया पोस्ट है, दीन को आप मजाक बना रही हैं, या इस तरह की। मेरा इसका मकसद ये हो था कि मेरे अमल से मर्द के अमल कैसे जुड़ा हुआ है, मेरा मकसद ये था बात करने का। मैंने ये कर दिया, आगे से कमेंट जो आ रहे हैं वो इस टाइप के आ रहे हैं। मेरा मकसद जो था वो बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था, उसके हिसाब से मैंने नॉलेज भी गेन किया हुआ था, और फिर मैंने बड़े तहम्मुल के साथ बात भी की उनसे और अपनी बात पहुंचाई कि मेरी पोस्ट का मकसद ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो ये था,
ठीक
और क्लियर किया एक एक पर्सन से जितने कमेंट हो रहे हैं, अगर 100 भी हैं तो सबसे बात करती हूँ, मेरा यही तरीका कार है बात करने का। अब मुझे मैं ये वो रवैये बहुत तकलीफ दे होते हैं, उस वक्त मैंने सब्र करके सबके साथ डील कर लिया, बात कर ली, समझा भी दिया, और शायद कुछ लोग समझे भी होंगे। सवाल मेरा ये है कि ये बर्दाश्त मैं रख के अपने अंदर नेक्स्ट पे कैसे दोबारा अपने आप को उभारूं, कि मैं ऐसी एक कोई और पोस्ट कर सकूं या ऐसी कोई और बात कर सकूं जिससे मतलब दूसरों को नॉलेज या जो भी मिले।
नहीं,
نیکسٹ میں کیسے میں ابھاروں, نیکسٹ میں کیسے ابھاروں, کیونکہ وہ تکلیف میرے اندر موجود ہے, ان کے وہ رویے میرے اندر ہیں.
رائٹ, آپ نے ابھی جو فرمایا کہ نیکسٹ پہ کیسے میں ابھاروں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں
مطلب کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں دوبارہ سے کوئی ایسی پوسٹ کرنا چاہتی ہوں یا اپنے مقصد میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو ان لوگوں کے رویے میرے اندر ابھی ہیں.
رائٹ,
ان کی وہ گفتگو, ان کے وہ غلط کمنٹ یا جو بھی ہے,
میں
ڈر رہی ہوں کہ میں نیکسٹ بات کروں گی تو پھر وہی ویسا ہی ہوگا. اس پر انسان خود پہ کیسے مضبوط ہو اور کیا کرے؟
اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, جب بھی کبھی ایک نیگیٹو ریسپانس بڑا اسٹرانگ آئے کسی چیز میں, تو میرا خیال ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز دیٹ وی شوڈ ڈو, ہم لوگوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, وہ یہ سمجھیں کہ کیا چیز ہے جس نے کہ نیگیٹو ریسپانس کو ٹریگر کیا ہے. یعنی میں اس سے امید یہ ہے کہ اگر میں اس پہ غور کرنا شروع کر دوں کہ کیا چیز ہے جس نے نیگیٹو ریسپانس کو ٹریگر کیا ہے, تو شاید میں آئندہ کی پوسٹس میں اس کا زیادہ خیال رکھ پاؤں گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ریسپانس جو آپ نے کیا, اور جس میں آپ نے جب یہ نیگیٹو ریسپانس آیا اور آپ نے لوگوں سے بات چیت کی, تو اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ نا کہ آپ اپنی بات کو زیادہ اچھی طرح سے ان کو کمیونیکیٹ کر دیں, سمجھا دیں. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کرنے پر وہ جس نے پہلی سٹیج پہ پہلے جو آپ نے جب پوسٹ کی تھی تو ریسپانس غلط دیا تھا, تو آپ نے کیا کہا کہ اس کا ریسپانس اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس سے آپ نے سیکھنا ہے. دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو, کہ میں اپنی اگر میں بات کوئی اچھی بات, کوئی پرپز فل بات لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے سنسنی پیدا کرنی ہے. یہ تو وہ مقصد ہو جائے گا کہ جو ہمارے میڈیا نے اب ایک نارمل چیز ہے جس کے لیے, یعنی ہمارا میڈیا نہیں صرف دنیا بھر کا میڈیا جو ہے, اس کو سنسنی کی ضرورت ہے. تو وہ اس طرح کے کامنٹس کرے گا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے نیگیٹو کامنٹس آئیں گے. آپ یقین کریں کہ جب کسی پروگرام پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اگر نیگیٹو کامنٹس آئیں تو وہ پروگرام کامیاب کامنٹ پروگرام ہوتا ہے, اس کو ناکام نہیں سمجھا جاتا. آپ جس مقصد سے یہ کرنا چاہ رہی ہیں, اس مقصد میں آپ یہ چاہتی ہیں کہ لوگ اس کو پازیٹیولی لیں, تو آپ نے سب سے پہلے اس کا انالیسز اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو پازیٹیولی نہیں لیا, اور میں نے کیا کیا کہ وہ اب سمجھ پائے ہیں. میں بات واضح کر سکوں جی؟
جی جی بالکل سمجھ رہے ہیں.
یعنی اپنے لیے اس کو ایک ایجوکیشن بنا لیں, اور اپنی نیکسٹ پوسٹ میں یہ جو لرننگ ہوئی ہے آپ کی اس انالیسز سے, کہ میں نے کیا کیا تھا کہ جس پر نیگیٹو بات ہوئی اور پھر میں نے کس طرح پریزنٹ کیا کہ وہ پازیٹیو ہو گئی, اس کو آئندہ پوسٹ میں اپنے اختیار کرنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ کی بات جو ہے, جو آپ جتنے خلوص سے فرمانا چاہ رہی ہیں, وہ اٹ ول بی ریسیوڈ بائی دا سیم سنسیریٹی انشاءاللہ. اور
انشاءاللہ سر,
اگر کامنٹ کرتے ہیں لوگ مثال کے طور پر, دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹاک ٹو یو, تو کامنٹ کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے جی. جدھر لوگ بہت برے کامنٹس کریں گے ادھر بہت اچھے بھی ہو جائیں گے, تو آئی تھنک نہ تو بہت اچھے کامنٹس پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے, نہ بہت برے کامنٹس پر بہت زیادہ مایوس ہونا چاہیے. اپنی کام کو نیک نیتی کے ساتھ اور زیادہ افیکٹولی, کہ میری بات جو ہے اس کو لوگ زیادہ محبت سے, زیادہ خلوص سے سن سکیں.
سر ہوا ایسا ہی رہا ہے, فرض کر لیں. میں یہ جو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ذاتیات پہ, آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, ذاتیات پہ بہت لے جاتے ہیں یہ پردے والی. اگر میں نے کہا ہے تو مین مقصد لوگ سمجھنے کی بجائے اپنی طرف سے یہ ڈال دیتے ہیں کہ عورتوں پر ہے ہی پردہ لازمی, اور مطلب ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عورت کو تو مرد سے بات ہی نہیں. اگر بحث ہو جائے گی, اچھی بحث ہو جائے گی, تو پھر لاسٹ پہ اپنی طرف سے یہ ڈال دیں گے کہ عورت کو تو مرد سے بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. مطلب ایسے پوائنٹ لانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ رائج ہیں. پردہ عورت پر نہیں فرض, فرض کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں فرض ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی عورتوں کو مطلب اگر کروانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کروائیں, لیکن دوسروں پہ ان پر کس کرتے ہیں, دوسروں پہ مطلب آپ کا نہیں حق بنتا یا جس طرح بھی اخلاق سے جو بھی سمجھایا جا سکتا. میرے اندر جو ڈر ہے نا, مجھے میں لرننگ ہی کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن وہ میرے اندر ختم نہیں ہوتا. نیکسٹ پوسٹ کرتے وقت وہ اندر ہی رہتا ہے. ہاں آپ نے اچھا کہا کہ اس کے لیے سبق ہی میں لے سکتی ہوں.
جی جی, اپنا فائدہ تو اسی میں ہے نا جی, کہ ہم اس کو سمجھیں کہ واٹ از اٹ جو مشتعل کرنے والی چیزیں ہیں, वो कम हो जाएं और जो ज्यादा इफेक्टिवली समझने आने वाली चीजें हैं उनको हम अपनी बातों में बढ़ा सकें इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत
मोस्ट वेलकम जी, बहुत शुक्रिया।
बट सर माई सेकेंड क्वेश्चन इज, जैसे अभी गौसा फरमा रही थी, वेरी ऑफन आप कुछ लर्निंग करते हैं रिलीजियस वाइज और आप फील करते हैं कि दिस इज माई करेक्ट ओपिनियन, फिर आप कुछ रिलीजियस स्कॉलर से बात करते हैं, इवन इन रिलीजन डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट, बट वेन यू ट्राई टू पॉइंट आउट के बट लिसन देर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, दिस आयत interpretation can be different than what you are doing, then again it is like being told ki, okay you don't want to listen, then forget it. So main ye kehna chah rahi thi ki do you have to just agree with every scholar you listen to, or you just listen to people who you feel you're comfortable with and who make you understand the real meaning of your deen?
I think the latter, obviously. You cannot possibly agree with every scholar that you listen to. It would be like agreeing with a person who says it's night and with another person who says it's day. This is not possible. You cannot agree with both of them, but you can at least, you know, look outside the window, look into the Quran and find out if it makes sense to you, whatever the person is saying. I don't think it's important that you have any, you know, your past or anything, but as a common man, for instance, you can decide ke jo baat aapko samajh mein aati hai, aap usko follow karein. That's not a problem. Allah Ta'ala ne itni yehi zimmedari dali hai ki jo cheez samajh mein aati hai usko aap follow kijiye. Albatta, ab Quran-e-Majeed ki badi achhi translations maujood hain ji, aap unko dekh sakte hain. Agar aap mehsoos karte hain ki ye jo baat jo aapki zindagi mein hai, wo is हुक्म से कुछ मुतसादम है, तो उसके नतीजे में आप उसको ठीक कर लीजिए. यही हमारी जिंदगी की आजमाइश है और हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें तौफीक भी दे, हौसला भी दे, हिम्मत भी दे कि हम इसको अपने अंदर से ठीक करते चले जाएं, और जब उसके उससे मिलने का टाइम आए तो हम इसको ठीक कर चुके हों इंशाल्लाह.
एंड आई मस्ट से, आई मस्ट कमेंट ऑन गौसिया, शी इज वेरी ब्रेव, कि अगर जो इन्होंने किया अबाउट पर्दा और फिर द मैन रिब्यूक्ड हर, आई डोंट थिंक आई वुड हैव हैड दैट ब्रेवरी, बट आई स्टिल फील दैट आई डोंट थिंक एनी ऑफ द मैन हैड अ राइट टू मेक नास्टी कमेंट्स. ये इनकी अपनी ओपिनियन थी, जैसे वो कह रही है कि भाई आप डिफरेंट फील करते हैं तो आप अपने घर में जो मर्जी करें, बट टू पब्लिकली रिब्यूक अ पर्सन ऑन फेसबुक, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अनफेयर एंड totally unnecessary.
I agree.
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब,
मोस्ट वेलकम जी.